आगे अगली आयात में यही बताया गया, यही आज का हमारा सबक है, मुत्तकी होता कैसा है, ताकि हम मुत्तकी बन सके। और पहली जो बात बताई गई, अल्लदीना, वो लोग, युमीनूना, ये वो लोग हैं। मुत्तकी कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो युमीनूना ईमान रखते हैं, बिल गैब, गैब पर। ईमान क्या चीज होती है, पहले तो ये बात समझे। ईमान होती है दिल में यकीन, दिल में इंसान मान जाए, जुबान से उसका इकरार करे, और नंबर थ्री अपने अमल से उसको साबित करे, अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं इनको, इनके साथ अमल करके उसका सबूत दे कि मेरा इस बात के ऊपर ईमान है। एक मिसाल देती हूँ, आपने वेदर में सुना कि अल्लाह ताला रहम करे कि कल बड़ा तूफान आ रहा है, आपके दिल ने उस बात को मान लिया, आपने जुबान से भी घर में सबको बोला भाई आपको पता है तूफान आ रहा है, मैंने आपने बिलीव किया इसको, सिर्फ दिल में नहीं रखा और बैठ ही नहीं रही, आपने सबको कॉल्स करके भी बताई आपको पता है तूफान आ रहा है, फिर उसके बाद फिर भी नहीं आप बैठी, फिर आप जल्दी जल्दी गई, भागी भागी ग्रोसरी स्टोर से चीजें लेकर आई और घर में जमा कर रही। इसको कहते हैं ईमान, हमने ईमान ले आए उसकी बात के ऊपर। ठीक है, एक सिंपल एक टर्म में आपको बता रही हूँ, यानी ईमान क्या चीज होती है कि दिल में भी उस चीज को माना, जुबान से भी उसका इकरार किया, और आपने एक्शन से भी करके दिखाया कि हाँ भाई मैं इसको बात को मानती हूं, क्योंकि जिस चीज को इंसान दिल से मानना होता है ऐसे हो ही नहीं सकता वो उसके ऊपर एक्शन ही ना करे। अगर आप बैठी रहती हैं और सो जाती जाके, तो इसका मतलब आपके दिल ने मानना नहीं था। जब इंसान का दिल किसी चीज को मान लेता है ना, वो खुद ब खुद उसके ऊपर एक्शन करता है। ये झूठ होता है, नहीं नहीं मेरा दिल तो मानता है, हाँ बस तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, उसके अंदर तो पता है ईमान कूट कूट के भरा हुआ है, चाहे बाहर कुछ भी नहीं नजर आ रहा, कोई जरूरी है दिखाना बाहर, हमने बस दिल में भर के रखा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये ईमान होता ही नहीं है, फिर अपने आप को धोखा देना होता है। आगे बात आएगी उन लोगों की भी जो खुद को धोखा दे रहे हैं। तो ईमान ये चीज होती है, ईमान जो होता है ना वो प्रूफ नहीं मांगता, हम खड़े होके नहीं कहते अच्छा आप वेदर ये बता रहे हैं, पहले आप मुझे बताएं कौन सी सैटेलाइट से आपने देखा, मुझे भी पहले दिखाएं कि कहाँ से तूफान आ रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, पहले मैं देखूंगी, नहीं हम बस मान लेते हैं उसने बता दिया। तो ईमान होता ही ये है, इस ट्रस्ट का नाम, इतमाद का नाम, कि आपने किसी की बात सुनी और उसको मान लिया। अब यहाँ पे क्या ईमान, जब हम अपनी इसमें पढ़ते हैं तो ईमान क्या चीज होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी हमें बताया, हमने बगैर देखे बगैर कोई तहकीक किए सब कुछ मान लिया हमने। हमने ये नहीं कहा अच्छा पहले आप हमें तो दिखाए ना, जिब्राइल अलैहि सलाम आ रहे हैं आपको दे रहे हैं वही तब हम मानेंगे, नहीं। ईमान इसी को तो कहते हैं कि मान गए हम। किस चीज को मानना है जो सबसे पहले जरूरी है? बिल गैब, गैब के साथ ईमान लाने वाले हैं। गैब का मतलब क्या चीज होती है? गैब उन सब चीजों को कहते हैं जिनको हम अपनी फाइव सेंसेस से नहीं महसूस कर सकते, उनका इदराक नहीं कर सकते, उनके बारे में नहीं जान सकते अपनी फाइव सेंसेस से। उसमें कौन कौन आ जाता है? अल्लाह की जात गैब है, ठीक है हम, ठीक है, निशानियां बेशुमार हैं दुनिया के अंदर जो हमें साबित करती हैं कि एक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह को तो नहीं देखा ना। तो निशानियां तो मौजूद हैं मगर वो जात को हमने बगैर देखे मानना है, गैब पे ही माने। मगर गैब पे ईमान सिर्फ अल्लाह के, अल्लाह सिर्फ गैब नहीं है, और भी बहुत सी चीजें गैब हैं, मसलन फरिश्ते, वो भी गैब हैं, उनके ऊपर भी ईमान लाओ कि फरिश्ते हैं। फिर और क्या क्या चीजें गैब हैं? जन्नत जहन्नुम गैब है, आपके साथ आखरत में कब्र में क्या होना ये सब गैब है, कब्र के सब हालात गैब ही हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो मानते ही नहीं कब्र, हम तो मानते ही नहीं कब्र के में क्या होना है, ये सारी चीजें बातें। और भाई जब आपको कुरान खोलते ही आपको कहा गया गैब पे ईमान लेकर आओ, जब हमारे नबी ने हमें बता दिया ये कब्र में ये होना है, यू हैव टू बिलीव दिस, वरना तो आपने गैब का इनकार कर दिया। और कुछ लोग क्या कहते हैं हमें क्या पता भाई क्या होता है, किसी ने आके थोड़ा ही बताया, तो इट मीन्स कि आपको ट्रस्ट नहीं है अपने नबी की बात पर, फिर तो ईमान नहीं हुआ, ईमान है ही नहीं। ईमान के गैब जो हमारे नबी ने बता दिया ना कि ये है, ऐसे है, फरिश्ते हैं, हम फरिश्तों को चाहे नहीं देखा हम कहते हैं हाँ है, बस उन्होंने बता दिया तो है, और उन्होंने बता दिया कब्र में ये अजाब है, या कब्र में ये इंसान को साथ हाल होता है, या उन्होंने बता दिया हशर में ये होगा, कयामत आएगी, वो कयामत भी तो गैब है, वो कौन सा हमने देखी है जाके, ये सब गैब की चीजें हैं। इनके ऊपर ईमान रखना मुत्तकी के लिए सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, इसके ऊपर ईमान रखो। ये बेसिक मुत्तकी है, ये अभी बहुत हाई लेवल का भी नहीं हुआ, ये बेसिक है, ठीक है। ये तो चीजें लाजमी हैं ही हैं, क्योंकि जब गैब पे ईमान नहीं होगा, कुरान फिर पढ़ते रह जाओ, क्या वो कहते हैं, हम तो अनसीन पे बिलीव नहीं करेंगे, सीइंग इज बिलीविंग, जब हमने कोई चीज देखी नहीं हम तो नहीं मानते, तो फिर आप इससे नहीं फायदा उठा सकते इस कलाम से, बिकॉज यू हैव टू बिलीव। अरे वो कहते हैं हम कैसे बिलीव कर लें, हम कैसे बिलीव करें जिसको हमने ना कभी देखा है, सबसे ज्यादा यही होता है ना आर्ग्यूमेंट नॉन मुस्लिम्स का, हम कैसे बिलीव कर लें। देखिए इसके अंदर बात यह है कि बिलीव जो करना देख के है ना, वो तो कोई बिलीव ही नहीं है, वो तो फिरौन ने भी जब डूब रहा था तो उसने भी कह दिया था कि अब मैं मूसा के रब पे ईमान लाया, जब उसने भी गैब देख लिया तो उसने भी कह दिया कयामत के दिन जब सब चीजें सामने आ जाएंगी तो अबू जहल अबू लहब भी बोल पड़ेंगे कि हम अल्लाह पे ईमान लाए, उस वक्त आपके ईमान का क्या फायदा, ईमान तो है ही गैब पे ईमान, कि हमने नहीं देखा फिर भी हम बिलीव करते, इवन हमने रसूलों को नहीं देखा हम फिर भी बिलीव करते हैं। रसूल आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने जो बात कही वो हक कही, ये इसी बात के तो रिवॉर्ड है, आपको दिखा के, मसलन है आप एक स्टूडेंट है, आपको जी एग्जामिनर पेपर देता है साथ ही आपको आंसर भी शीट भी दे देता है, तो आपका इम्तिहान किस बात का है जनाब, किस बात के नंबर आपको मिलने चाहिए। अब हमें दिखा दिया जाए सारा, कयामत में ले जाकर खड़ा कर दिया, फरिश्ते भी उतर रहे हैं, अब उसके बाद पूछा जाए आपका ईमान है, तो ये कौन सा ईमान है भाई, ईमान है ही गैब पर ईमान का नाम, ये है आपसे मतलूब। अरे दिस इज योर टेस्ट, दिस इज योर टेस्ट, ये मत कहो कि मुझे देखूंगी तो मैं बिलीव करूंगी, नो दिस इज द टेस्ट, कि आप इस अकल को इस्तेमाल करते हुए निशानियों को देख के अल्लाह को पहचान जाओ, और फिर जब अल्लाह को मान लिया और फिर उसके बाद ये मान लिया कि उसके रसूल आए, और फिर जब जो चीज अल्लाह ने बताई वो सब फिर हक है, सबसे बड़ी हस्ती को मान लिया तो जो उसने बताया फिर तो मानना कोई मुश्किल ही नहीं, फिर तो कयामत भी हक है चाहे अभी नहीं आई, जन्नत जहन्नुम भी हक है, सब हक है, ठीक है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है गैब पर ईमान, डोंट एस्क फॉर अ प्रूफ, डोंट एस्क जो है ना मैं देखूंगी तो फिर मैं मानूंगी, नो मेरा गैब पे ईमान है, यही सबसे पहली बात इस कुरान में ईमान की जो आई वो गैब पर ईमान है, ठीक है। मैं बता दिया गैब में कौन कौन सी चीजें आती। अच्छा अब एक और अहम बात समझे इस बात को, ये कहना कि हम अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हैं, फरिश्तों पर ईमान लाते हैं, तकदीर पर ईमान आते हैं, जितने भी ईमानियात है हमारी रसूलों पर किताबों पर, ये हम ईमान लाते हैं, ये तो हमें जो है ना नर्सरी क्लास से रटा दिया जाता है, वो संडे स्कूल में जाते हैं उनको भी बच्चों को याद करा दिया जाता है, तो अब आप हमें ये क्वेश्चन पूछें तो हम तो फौरन लिख के इसके टेस्टों में आ जाता है, उसके हमें नंबर मिल जाएंगे, रात को उठा के बिठा दें पूछते हैं ईमानियात कौन कौन सी हैं तो हम बता देंगे। लेकिन एक बात बताइए, जब ये प्रैक्टिकल फॉर्म में आता है, असल बात तो तब है कि ईमान बिल गैब है या नहीं, असल बात तब है। प्रैक्टिकल फॉर्म में मसलन कैसे, अल्लाह अकबर, यहीं पे हमारा पता चलता है हमारा ईमान बिलगैब कितनी हद तक है भी कि सिर्फ रटी रटाई बातें ही। जब ये आता है कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, हमें कहा जाता है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, सबर वालों के साथ अल्लाह है, हमें कहा जाता है सबर वालों के लिए बे हिसाब अजर है, मुझे बताएं तब हमें कुछ यकीन आता है गैब पे, उन्हें मुझे तो अजर नहीं नजर आ रहा, वो अजर आपको मिल रहा है नहीं लेकिन मेरे सामने तो नहीं है, तब इंसान के दिल तभी सकून में आएगा जब उसको ये गैब पर ईमान होगा कि हाँ मेरा अजर लिखा हुआ है कहीं सेव हो रहा है। जब इंसान नेकी करता है तो नेकी में मुशक्कत होती है ना, नेकी में मेहनत करनी पड़ती है ना, नेकी पर क्या चीज है जो उसको मजबूत रखेगी? ये ईमान बिल गैब कि ये मैं नेकी कर रही हूं ना, इसका अजर मुझे मेरा अल्लाह देगा, तब इंसान है जो वो चल सकता है उस नेकी के रास्ते पर। अगर उसका गैब पर ईमान ही नहीं है तो फिर वो तो नेकी करना बड़ा मुश्किल है, फिर मुझे क्या मिलेगा इससे? फिर ये सवाल आता है ना, मैं क्यों करूं फिर? मैं इतनी मेहनत करूं किसके लिए करूं? तो ये गैब पर ईमान इतना जरूरी है कि इंसान नेकी कर ही नहीं सकता जब तक उसका गैब पर ईमान ना हो, जब तक उसको ये बात अच्छी तरह नहीं पता कि हाँ मेरे लिए ये अजर का बाइस है। इसी तरह कोई बुराई है, अब इंसान का जब गैब पर ईमान है ना कि ये फरिश्ते मेरे साथ बैठे हुए हैं जो लिख रहे हैं सारी मेरी बातों को, तो फिर वो एकदम डर जाएगा कि ओ मेरे साथ फरिश्ते हैं। ये प्रैक्टिकली जब आता है ना गैब पर ईमान, तब पता चलता है कि है भी या नहीं है। और जब इंसान बेपरवाह होता है, क्योंकि गैब है, नजर नहीं आता, सेंसेस से महसूस नहीं होता, तब पता चलता है हाँ कितना है ये ईमान। मुझे ये यकीन है फरिश्ते हैं मेरे साथ। कोई लोग हैं हराम पैसा कमा के बहुत आगे निकल गए और आप अभी तक वैसे ही बैठे हैं। जब आपका ईमान बिल गैब होगा ना कि रिस्क मेरे अल्लाह के हाथ में और उसने जितना मेरे लिए लिखा है वो मुझे मिल के रहना, ये है गैब पर ईमान, तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। अदरवाइज तो आप हलकान ही रहेंगे, देखो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, हम तो अभी तक यही हैं। ये भी गैब पर ईमान है कि जब इंसान अल्लाह के लिए वक्त लगाता है तो उसको पता है कि ये मेरा वक्त, ये मेरी मेहनत बहुत ज्यादा मेरे लिए वहां पे अजर व सवाब के पहाड़ बन रहे हैं, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला इन चीजों से खुश होता है, तो अल्लाह यकीनन ये जो मेरा काम है ये अल्लाह को पसंद है ना, तो मैं ये काम करूं। अब वही इंसान गैब पर ईमान नहीं होगा तो कहेगा मैं इसके ऊपर क्यों टाइम वेस्ट करूं, जाके मैं नौकरी करता हूं, कोई पैसे चार कमाता हूं। पैसे नजर आती हैं, डिग्रियां नजर आती हैं, इसलिए हम पैसों के लिए मेहनत करते हैं, नौकरियां करते हैं, बिजनेस करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें डिग्री नजर आती है, गैब नजर नहीं आ रहा। जिसको ट्रस्ट होगा, जिसका ब्लाइंड फेथ होगा, वो ही फिर मेहनत करेगा इस रास्ते में, बाकी कोई नहीं करेगा। कहेगा मिलेगा हमें क्या इससे? अब आप यहां पे बैठे हैं, आपको क्या मिलेगा? एक सर्टिफिकेट, चलो सर्टिफिकेट फिर भी एक देखने की चीज है, लेकिन अदरवाइज क्या मिलेगा? कोई पैसे मिल रहे हैं, कोई कुछ मिल रहा है? कुछ भी। जिसका गैब पर ईमान होगा फिर वही मेहनत करेगा इस रास्ते में भी। इसी तरह आप देखें आज हर तरफ इस्लाम कोई ज्यादा को बहुत फ्लरिश ऐसे करते हुए बड़ी इज्जतें नहीं मिल रही लोगों को, कितनी मुसलमानों के ऊपर कितने खराब हालात हैं इस वक्त, मजाक भी उड़ाया जाता है, जिल्लत भी दी जाती है मुसलमानों को। इस वक्त ये ईमान रखना कि यही मेरा दीन है जो सच्चा दीन है, ये भी गैब पर ईमान है। उस वक्त ये ईमान रखना, रसूलों को बड़ा सताया गया तो मेरा भी अजर इसमें बढ़ेगा, अगर मुझे भी सताया जा रहा है तो कोई बात नहीं है, ये गैब पर ईमान है। क्योंकि ये सारी चीजें तो गैब में हो रही है ना, आपका काउंटर वहां चल रहा है, आपकी एडिशन वहां हो रही है, आपके अकाउंट में वहां इजाफा हो रहा है। तो ये जब ईमान होता है तभी इंसान आगे इस रास्ते पर चल पाता है, तभी इंसान, आप कहें इतना अजर आपको मिलेगा, आप इतना काम करते हैं, इतना इतना इसका अजर है, तो हम कहें कहाँ है अजर, किधर है, मुझे ले जाके दिखाओ अजर, पहले बताओ। फिर गैब पर ईमान रखना जरूरी है, वरना तो इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकते जो आगे आ रहे हैं, जो लिस्ट आगे दी हुई है ना, कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये जो लोग कहते हैं गैब पर ईमान, हमें पहले दिखाएं दिखाएं, आप खुद सोचें, कई चीजें इस दुनिया के अंदर हैं जो आप वो गैब है वो, लेकिन आप मानते हैं उनको। अब ठीक है, वो साइंस अब कहती है कि जो भी टेंजिबल चीज है बस उसके ऊपर बिलीव करो, बाकी जो नजर नहीं आती, जो आप अपने हवास से नहीं जान सकते, वो तो आप बिलीव ही ना करें, और उसमें खुदा की जात भी आ जाती है। वो कहते हैं नहीं, हम जब जान ही नहीं सकते ना, हम किसी उससे देख सकते हैं, तो फिर हम क्यों बिलीव करें? हालांकि क्या आपको कहा जाए, आप कहें मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ, आपको कहा जाए कहाँ है वो मोहब्बत, पहले मुझे दिखाओ ना, दिखाओ मुझे, कैसे, कोई थर्मामीटर है जिससे मैं नापूं, कोई आला है जिससे मुझे पता चले? नहीं, आप कहते हैं बस है, वो कहाँ है, कहाँ, वो तो गायब ही है ना, हम मान लेते हैं फिर। दुनिया में बहुत सारी चीजें हम मानते हैं जो गायब, ठीक है, कई आलों से, वो कहते हैं नहीं वो तुम आलों से तो मेजर कर सकते हैं, बुखार नजर नहीं आता, चलो आले से तो पता चल जाता, अल्लाह की जात कहां से पता चलेगी, तो तुम्हें ये निशानियां नहीं नजर आ रही। तो बात तो यही है कि फिर इन इन्हीं को देखकर फिर गैब पर ईमान लाना कि ऐसा है, तभी फिर फायदा हो सकता है इस कुरान से आगे की हिदायत मिले, और यहीं पे अगर इंसान स्लिप कर जाए तो आगे फिर उसको हिदायत तो नहीं मिल सकती। पढ़ लेंगे हम, बहुत सारे प्रोफेसर वगैरह पढ़ते हैं इसी कुरान को पढ़ पढ़ के, आगे लेक्चर्स भी देते हैं, लोगों को भटकाने के लिए भी लोग पढ़ते हैं इस कुरान को कि हम इसमें से शोशे निकालें ताकि लोगों को बदजन करें इस्लाम से, तो हिदायत थोड़ी मिल जाती है उनको। तो गैब पर ईमान पहले लाएं। वयुकीमून अस्सला, और वो कायम करते हैं नमाज को। नमाज को कायम करना क्या होता है, यहां पे युसल्लूना नहीं कहा गया, वो पढ़ते हैं नमाज। आप देखें कुराने पाक में कहीं पे भी सल्लू नहीं कहा गया, नमाज पढ़ो, हमेशा कहा गया इकामत सलात का। इकामत सलात क्या होती है, यानी कायम करना नमाज को। कायम करने में क्या है, शुरू से एंड तक जितनी चीजें नमाज की हैं वो सब इसमें आ जाती हैं, जिसमें आपकी तहारत से लेकर वक्त की पाबंदी से लेकर आपका जो नमाज के जो अरकान है उनको सही अदा करने से लेकर खुशू से लेकर सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। युकीमुन अस्सला में, अरे इंसान की नमाज जो है, नमाज के जरिए से ही उसका कनेक्शन है ना अल्लाह ताला के साथ। नमाज का पहला हुक्म जो, यानी फिजिकली जो परफॉर्म करने का, वो नमाज का आया है। तो वुजू भी सही करो, वुजू से वुजू अच्छा वाला वुजू करो, वक्त का भी ख्याल रखो, रुकू सज्दे भी पूरे करो, तहारत भी आपकी कपड़ों की भी होनी चाहिए, तिलावत भी सही तरीके से करो, हर एक रुकन को ठहर ठहर के भी करो, तवज्जो भी रखो नमाज के अंदर, ये सारा कुछ इसमें है। और नमाज वो इबादत है, वो इबादत है जो अल्लाह ताला ने जमीन पे नहीं उतारी है, पता है ना आपको, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे बुला के नमाज तोहफे के तौर पे दिए। हमें तो तोहफा नहीं लगती, हमें तो बोझ लगती है, क्योंकि हम नमाज में अल्लाह से मुलाकात थोड़ी करने जाते हैं, अल्लाह से बातें थोड़ी करने जाते हैं, हम तो नमाज में बस ढूंगे मारने जाते हैं। तो ये नमाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। जो भी कोई मुश्किल होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पे खड़े हो जाते थे। तो नमाज को इस तरह कि हम अल्लाह से बात कर रहे हैं इस तरह अदा किया जाए, ये बातें हो रही हैं। इसके लिए इंसान क्या कर सकता है कि मुख्तलिफ पोर्शंस कुरान करीम के याद करें, एक ही चीजें ना हमेशा पढ़े। उससे क्या होगा कि आप जब डिफरेंट पोर्शंस पढ़ेंगे तो आपकी तवज्जो रहेगी, दिमाग भटकेगा नहीं। उसके तर्जुमे को याद करें, तर्जुमा याद करने से भी आपका दिमाग फोकस्ड रहता है। तो नमाज में खड़े होने से पहले थोड़ा सा जहन को तैयार कर लें कि मैं अल्लाह के सामने खड़े होने लगी। देखिए आज बहुत सारे लोग नमाज छोड़ चुके हैं, यानी कोई पढ़ते हैं तो तीन पढ़ ली, किसी ने चार पढ़ ली, फजर की तो अक्सर ही लोगों की गायब होती है। उस वक्त जिस वक्त परिंदे तक अल्लाह की तस्बीह कर रहे होते हैं, उस वक्त कितनी बदनसीबी है कि इंसान सोता रह जाए, जानवर तक उस वक्त तस्बीह करते हैं, और जो पांच पढ़ भी लेते हैं वो भी कैसे मारे बांधे के पढ़ते हैं, फिर नमाजें कजा आ रही हैं, कोई परवाह नहीं है। तो ये नमाज तो वो है रुकन जो किसी हाल में माफ नहीं है, किसी हाल में नहीं है, सिवाय हैज की हालत में औरत होती है तो उसके लिए माफी है। अदरवाइज देखिए बिस्तर पे भी है ना, बीमार भी पड़े हुए हैं, सकत उठने की भी नहीं, तब भी नमाज माफ नहीं है। तो जो बीमारी में भी माफ ना हो, जबकि आपको पता है रोजा बीमारी में माफ हो जाता है, यानी आप फिदिया दे दें, हज और जकात भी फर्ज है किसी शरायत के साथ, नमाज का तो ऐसा नहीं है, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। कितने हमारे लोग हैं नमाज छोड़ चुके, तो नमाज के ऊपर अपनी तवज्जो करें। फिर अगली चीज तीसरी, वा मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और उस में से, ये मिन तबीज का है, यानी बाज यानी सारा का सारा नहीं देने को कहा जा रहा, उसमें से जो रजकना हमने रिस्क दिया उनको, युनफिकून वो खर्च करते हैं। यानी तीसरी चीज क्या आई कि खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, दो अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह ताला ने इतनी दफा कुरान करीम में आप देखेंगे इस सूरत में भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की इतनी ताकीद फरमाई है कि गिविंग बन जाओ, देने वाले बन जाओ, अपने हाथ से दो लोगों को। और यहां तक एक जगह फरमाया कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज देता है, इसको कर्ज कहा, हालांकि दिया अल्लाह ने रजक ना, हमने ही रिस्क दिया है उनको, उसमें से वो खर्च करते हैं। अल्लाह ताला ने फिर बता दिया हमें कि ये जो तुम्हारे पास है ये तुम्हारा नहीं है, तुम उसको कहीं और से नहीं लेकर आए, अल्लाह ने दिया है। जब हमें पता हो कि ये जो मेरे पास चीज है ये मेरी नहीं, किसी ने दी है, और वो ही जिसकी चीज है, मसलन आपने मेरे पास अमानत रखा है, या आप फोन करके कहती है देखिए जो मैंने आपको पैसे दिए हैं ना, उनमें से इतने पैसे आप फलां को दे दें, तो मुझे कोई प्रॉब्लम होना चाहिए क्या? मैं नहीं देती आप, मैं बस मेरे घर में पड़े, मैंने नहीं दे रही, ऐसे तो नहीं आप कहते। आप कहते हैं भाई उसकी चीज है तो उसने कही है तो ठीक है मैं दे देती। लेकिन प्रॉब्लम ये है जब हम समझते ही नहीं कि अल्लाह ने हमें दिया हुआ ना, हम समझते मेरा है, मैंने अपनी मेहनत से कमाया, मैं क्यों दूं। जब हमारा ये रवैया होता है ना, फिर देने में भी मुश्किल होती है। लेकिन जब हमें ये पता है ना अल्लाह ने दिया है, उसी का तो ये है, वो ही कह रहा है कि मेरे दिए में से दे दो तो मुझे क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन बात फिर वही है ना गैब पर ईमान की, जिसका गैब पर ईमान होगा वो ही फिर दे सकता है, और जिसका गैब पर ईमान नहीं वो कहता है ये मेरे पैसे मुझसे चले जाएंगे। जिसका गैब पर ईमान है उसके लिए तो ऐसे ही है ना, अल्लाह ताला फरमाता है ना कि जो देता है मुझे मेरे रास्ते में देता है, तो अल्लाह ताला दुनिया में भी अता फरमाता है और आखिरत में भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के फरमाया कि सदका करने से माल कम नहीं होता, ये मैं कसम खा के कहता हूं कि घटेगा नहीं तुम्हारा माल, दुनिया में भी अल्लाह उसको कॉम्पेंसेट करेगा और कई गुना ज्यादा, 10 दुनिया 70 आखिरत का फॉर्मूला याद कर ले, और 70 से ज्यादा भी अल्लाह कर सकता है, बेहिसाब भी दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन इंटेंशन। एक खजूर को खुद पहाड़ के बराबर भी बना सकता है। तो समझ लें जैसे हम जाते हैं बैंक में, हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं, तो क्या हम उनसे कहते हैं पहले हमें दिखाएं कहाँ पे आप मेरे पैसे डाल रहे हैं और मुझे मिलेंगे भी या नहीं? नहीं, हम इनके ऊपर कितना भरोसा करते हैं, हालांकि बैंक तो बैंकरप्ट भी हो जाते हैं, बैंक तो खत्म भी हो जाते हैं गए लोगों के पैसे, फिर भी हम कितना भरोसा करते हैं, अपनी सारी जमा पूंजी ले जाके उनके पास रख देते हैं, अपने लॉकर वहां पे रखते हैं, वहां पे सारी अपनी कीमती चीजें उनके पास रखाते हैं। हाँ, हमें कभी खटका भी नहीं होता, बस मेरी सेफ है ना चीज, मैंने वहां रख दी। लेकिन अल्लाह के पास उसके अकाउंट में जमा कराते हुए हमें लगता है कि हमारे पैसे चले जाएंगे, आए घट जाएंगे। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह पे इतना भी हमें भरोसा नहीं जितना एक बैंक वाले पे भरोसा होता है। आपने जिसको दिए तो आपने, वो आपसे चला नहीं गया, वो आपने अकाउंट में जमा करा दिया, वो वाला अकाउंट जो अल्लाह के पास है और अल्लाह का वादा है कि मैं दूंगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। प्रॉब्लम क्या है फिर? अल्लाह के वादे पे यकीन नहीं, क्योंकि गैब का यकीन है ना, ये तो ये है यकीन गैब का। बेस इज ईमान बिल गैब, दिस इज द बेस, इसके ऊपर आपकी इमारत खड़ी होगी। बेस में ही प्रॉब्लम है तो आगे क्या होगा फिर? तो जब आपको जिस दिन भरोसा आ गया अल्लाह के वादों पे, अल्लाह की बातों पे, अल्लाह की दी हुई खुशखबरियों पे, या उसके अजाबों पे, उसकी जन्नत जहन्नुम पे, आखरत के दिन, जिन जिस दिन इन चीजों के ऊपर आगे आ रहा है ना ईमान बिल आखरत की भी बात, भरोसा आ गया, बहुत सी चीजें हमारी सही हो जाएंगी। और हमें अपने हाथ से जाता हुआ नजर आता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या करती थी, जिस वक्त कुछ देती थी अल्लाह के रास्ते में तो खुशबू लगा के देती थी, कहती थी, वो पूछते क्यों देती हैं ऐसे, कहती थी अल्लाह को दे रही हूं ना इसलिए खुशबू लगा के दे रही हूँ। वो ये नहीं देखती थी ये तो फकीर है इसको दे रही हूँ, ये लो पकड़ो और जान छोड़ो, ऐसे करके देते हैं ना, तो वो कहती ये अल्लाह को दे रही हूं इसलिए ऐसे दे रही हूं। तो वो इसको कभी ये ना समझे कि चला गया, इसको ये समझे मैंने बैंक में जमा करा दिया। वो कौन से बैंक का नाम क्या है? अल्लाह का बैंक। ठीक है ना, और वहां से मिलेगा, अल्लाह अपने वादों के खिलाफ नहीं करता। ठीक, अच्छा, दूसरा एक बहुत अहम पॉइंट इसमें, रज़क ना हो, रिस्क हम समझते हैं अपनी डिक्शनरी के मुताबिक, अपनी उर्दू बोलचाल के मुताबिक, रिस्क मींस माल, सिर्फ पैसे देने को का यहां पे कहा गया, खर्च करते हैं। हालांकि रिस्क जो है वो जो भी आपको खैर और भलाई और नेमते मिली हुई है वो सब रिस्क हैं, सब रिस्क है। रिस्क सिर्फ माल नहीं है, माल इज पार्ट ऑफ रिस्क, लेकिन माल सिर्फ रिस्क नहीं कहलाता, रिस्क में सब चीजें हैं। रिस्क के अंदर आपकी जवानी भी आपका रिस्क है, आपकी सेहत भी आपका रिस्क है, आपका घर बार भी आपका रिस्क है, आपकी सवारी आपका रिस्क है, इल्म आपके पास रिस्क है, आपकी सलाहियतें, कोई स्किल है आपके पास वो आपका रिस्क है। हो सकता है किसी के पास माल भी ना हो लेकिन उसके पास बड़ी अच्छी स्किल्स है, कोई नॉलेज है उसके पास, वो अल्लाह के रास्ते में दे सकता। आपके पास कंप्यूटर स्किल्स हैं, आप उसके जरिए अल्लाह के दीन की, अब वो ना यूनिफिक खर्च करते हैं, किधर खर्च करते हैं, अगर बाजार में शॉपिंग करते हैं, नहीं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बात हो रही है, यानी अल्लाह के दीन की नशर इशात के लिए, अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए। आपको बस सिर्फ ड्राइविंग ही आती है और कुछ भी नहीं आता, और आपके पास एक गाड़ी है, तो आप उसके जरिए किस तरह से अल्लाह के बंदों के लिए खिदमत कर सकती हैं, कैसे इसको खर्च कर सकती हैं अल्लाह के रास्ते में। हम तो हर चीज में आजकल इतने मटेरियलिस्टिक हो गए, फौरन हमारा क्या होता है, फिर मुझे का क्या मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे भाई, कभी पैसों से निकल भी आओ। यहाँ पे कहा गया मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, अल्लाह के रास्ते में देना, अल्लाह देगा ना अजर। मन बात फिर रहा एंड वही बात आ गई ना, गैब पर ईमान है कि नहीं, कि अल्लाह देगा ना अजर, मुफ्त तो नहीं मैं कर रही। अगर मेरे पास कंप्यूटर स्किल्स है, मैं उसके जरिए कोई हेल्प कर रही हूँ किसी की दीन सीखने में, पढ़ने में, ये जितने लोग काम कर रहे हैं आपके लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने एडमिन्स हैं दिन रात काम में लगे हुए हैं, क्या मिल रहा है इनको? अगर ईमान बिल गैब है तो हाँ मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। कोई प्रोग्रामर, कोई कहीं कोई भी वर्कर 1 घंटे के कितने पैसे लेता होगा, लेकिन अल्लाह के पास उससे कहीं बड़ा अजर है, और वो एक एक घंटा नहीं देखता, वो तो एक एक सेकंड भी मेरा है ना उसको भी गिन रहा है, जितने मेरा माइंड इसमें खप रहा है, मेरी जितनी एनर्जी इसके अंदर लग रही है, वो सब इसका रिवॉर्ड है। हालांकि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला तो कुछ भी ना दे तो तब भी हमें उसके रास्ते में लगाना चाहिए, क्यों? उसकी चीज है, उसके रास्ते में ना लगे तो कब कहां लगे, ये जान दी हुई उसी की है। वो शेर है ना कि ये जान, मुझे भूल गया, जेहन से निकल गया, अच्छा याद आता है तो बताती हूँ। ये जान दी हुई उसी की है, हक तो ये कि हक अदा ना हुआ। हाँ याद आ गया कि ये जान भी अगर मैंने दी दी तो किसकी दी हुई है, ये जान उसी की दी हुई, हक तो फिर भी अदा नहीं होता, लेकिन वो कितना करीम रब है कि वो उसके ऊपर भी अता करता है, कहता मैं रिवॉर्ड दूंगा तुम्हें, और हम इतने थोड़ दिले हैं कि हमसे दिया नहीं जाता, क्यों दूं, मेरा टाइम, कई लोगों के पास टाइम है वो टाइम ही नहीं निकाल को मांगते, टाइम तब दूंगी जब मुझे कोई पैसे मिलेंगे। हमारे लिए हर चीज वही बात है ना कि दुनिया जो है वो दिल में है कि बाहर है, कश्ती में आपके पानी है या आपकी कश्ती पानी में चल रही है, असल तो ये बात है कि अब आप किस तरह से देखते हो, अब मुझे मिलेगा क्या इसका भाई, अब जब तक कोई सामने चीज पैसों की सूरत में ना मिले हमें तो लगता है हमें कुछ मिला ही नहीं। तो देखो ये सब अल्लाह के वादों पे यकीन करने से आएगा, कि फिर दोगे भी लगाओ अपने आप को, हम में से सब देखें कि मेरे पास क्या है, किसी के पास हिम्मत ताकत है, या कोई जिस्मानी चीज, कोई ऐसी आपके पास कोई फिजिकल चीज है, या कोई रूहानी की चीज है, या कोई कोई और ऐसे काम, हुनर, कोई कोई चीज तो आपके पास होगी, क्या चीज है जो आप दे सकते हैं। देखिए पढ़ पढ़ के आगे जाना बहुत आसान है, हमारे इस कोर्स का मकसद ये नहीं कि हम पढ़ के बस आगे जाते जाए, हमने देखना है कि इन आयतों को हम लें कैसे अपने लिए। मैं तो आपको पढ़ा दूं मुत्तकी की ये क्वालिटीज हैं, चलो आप भी बस्ता उठाएं और घर चले गए, किताबें बंद करके बैठ गए, नहीं सोचें भी तो सही ना, मेरे पास क्या है जो मैं अल्लाह तेरे लिए दे सकती हूँ, क्या है मेरे पास, हर एक के पास कुछ ना कुछ है। और देखिए सुभान अल्लाह, इंटरेस्टिंग थिंग, रजक ना हम जो है ना वो पास्ट टेंस है, माजी में है, रजक ना हम जो दिया हमने तुमको, ये नहीं कि जो देंगे हम तुमको, हम क्या कहते हैं महाराज, कहते हाँ जब ना मेरे इतने पैसे आएंगे, बोनस आएगा, कमेटी निकलेगी, या ये होगा वो होगा, फिर मैं उसमें से दूंगी। ये नहीं, अगर दूंगी की तो बात की बात है, जब वो आएंगे तो देखा जाएगा। जो इस वक्त तुम्हारे पास है, जो अल्लाह ने ऑलरेडी हर एक को कुछ ना कुछ दिया है, उसमें से दो ना तुम। अब आप कहते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका, हाँ पैसा हो सकता है हर एक के पास नहीं हो, लेकिन और कुछ ना कुछ जरूर है। पहचाने क्या चीज है और उसको किस तरह आप काम में लाएंगी अल्लाह के रास्ते के लिए, और उसके लिए टाइम निकालें। फिर वो आपकी कोई, आपके बोलने की ताकत हो सकती है कि आपके पास कोई बोलने की सलाहियत है, कोई लिखने की सलाहियत हो सकती है, कोई और चीज हो सकती है, आप पढ़े लिखे कुछ भी नहीं है, वो कोई हुनर ही आता है, उसमें किसी तरह लगा दें। आपको मैंने कहा ना, आपको ड्राइविंग ही आती है, अपनी गाड़ी में राइड दे के किसी को ले जाए कहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर करें, जो कहें आप कि अल्लाह ये तेरे लिए है, ये मैंने तेरे रास्ते में किया और मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से सिला, ये जरूर होना चाहिए। तो वो जो मुत्तकी होते हैं वो तो भाई ऐसे होते हैं। ठीक है, समझ आ गई इतनी बातें। तो अब हमने आगे की ये प्लानिंग में ही सोचनी कि जब फलां पैसे आएंगे, अब हमने ये देखना जो अभी तक मेरे पास है। सब अपना अपना कुछ ना कुछ इस वीक में सोचे कि कौन सी चीज मैंने लगानी है। ठीक है, किसी को बताने की नहीं जरूरत है, लेकिन आपने खुद करना है। किसी को फोन पे कोई बात समझा दे, देखा अब हमने आपने, अच्छा चलो कुछ भी नहीं आपके पास, सूरह फातिहा भी आपने सीख ली, ये किसी और तक पहुंचा दीजिए, ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। आपको जो इल्म मिला वो आपने आगे दे दिया। किसी को बुला लें अपनी जुबान से कुरान की तरफ, ये भी एक है चीज। आप अपनी कोई सर्विस दे दें कि मुझे ये चीज आती है, मेरे से ये काम ले लीजिए, मैं इस अपने वक्त को अल्लाह के रास्ते में देना चाहती हूँ। किसी तरह तो करें। ये मोमिन जो मुत्तकी होता है ना, वो देने वाला होता है। और सोचें जो देने वाला हो, वो तो फिर कभी लूट का सूट नहीं कर सकता कि मैं इससे भी छीन लूं, उसका भी हक मार लूं। इसका मतलब है वो गिविंग है, मुत्तकी जो है वो गिविंग है। ठीक है, वल्लदीना युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक, और वो लोग ईमान लाते हैं साथ उसके जो नाजिल किया गया आपकी तरफ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ। क्या नाजिल किया गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कुरान भी नाजिल हुआ है और हदीस भी। याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सिर्फ कुरान नहीं नाजिल हुआ, कुरान तो वही मतलू है, यानी वही वो है जो तिलावत की जाती है, एक वही की किस्म गैर मतलू भी है। ये जो सारी आप अहदीस पढ़ते हैं, मसलन आप बुखारी उठा लें, ये उठा लें, कितना नॉलेज है इसमें, समंदर है नॉलेज के। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पहले से आते थे, जन्नत में ऐसे है, जहन्नुम में ऐसे है, और फरिश्ते ने आके ये कहा, और जो बातें और सारी, ये नबुवत से पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बातें नहीं कही थी। इससे क्या पता चला? ये वही की सूरत में आप पर उतरती थी ना, आपको किसी ने आके बताई तो आपको पता चली ना, खुद से तो नहीं पता चली थी। तो ये भी वही की सूरत है, लेकिन ये वही गैर मतलू है, पढ़ी नहीं जाती, तिलावत नहीं की जाती कुरान की तरह। तो उसके ऊपर भी ईमान रखना जरूरी है। यहीं पे आके खत्म हो जाता है अकीदा, रद्द हो जाता है उनका, उनके अकीदे का, जो कहते हैं कि हदीस को हम नहीं मानते, जो कहते हैं ना मुनकिरीन हदीस, जो आज एक नया ही फितना शुरू हो गया और यूथ के लिए बहुत वो तबाहियां मचा रहे हैं, कि यंग बच्चों को इस तरफ लगा रहे हैं कि ये तो हदीस तो बाद में लिखी गई, हम तो मानते ही नहीं। अगर आप हदीस को नहीं मानते तो आपको पता है जो कुरान है ना, वो भी किसकी जुबान से आपको पहुंचा, उतरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे, आप वो किसकी जुबान से मिला था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से मिला था ना, तो ये वही मतलू है ना, तो फिर ये कह दो हम इसको भी नहीं मानते। कहते नहीं, हम तो सिर्फ कुरान को मानते, हदीस को नहीं मानेंगे। अल्लाह अकबर। वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक, और वो जो नाजिल किया गया आपसे पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नाजिल हुआ, क्या नाजिल हुआ? यानी वो जो इल्हामी किताबें, जो सुहुफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल हुए, तौरात, इंजील, जबूर और सुहुफ इब्राहिम, जो भी अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया उसको भी हम मानते हैं। मानने का मतलब ये नहीं कि आज से आप तौरात लेके बैठ जाएं, अब आप मैं तौरात का कोर्स शुरू कर देती, नहीं। मानने का मतलब ये कि हम ये मानते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से उतरी हैं। अब तो देखें उसमें इतनी तहरीफ हो चुकी है, इतनी चेंजेस हो चुकी हैं, अल्लाह ताला माफ करे। एक दफा मैं एक कोई बुक स्टडी कर रही थी जिसमें जो कंपैरेटिव रिलीजन टाइप की थी बुक, तो उसमें कुछ जो इनकी किताबों के भी कुछ चीजें उन्होंने बताई हुई थी, और मैं जुबान पर भी नहीं ला सकती कि कितनी घटिया चीजें थी जो कि पैगंबरों के बारे में उन्होंने लिखी हुई थी। इतनी गलीज चीजें थी कि इंसान किसी बुरे से बुरे इंसान को जो आज के दौर में होगा उसके लिए भी नहीं वो चीजें सोच सकता जो उन्होंने पैगंबरों के बारे में लिखी है। इंसान परेशान हो जाता है कि ये पहले तो आपको यकीन ही नहीं आता कि ये पैगंबरों की बात कर रहे हैं, ये किस बात किसकी बात कर, कि जिनको ना कोई महरम रिश्तों का कोई ख्याल था ना कोई किसी चीज का ख्याल था तो ये करते थे, इतनी बुरी बुरी बातें। तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से होंगे? तो ये किताबें जो ओरिजिनली उतरी थी वो अल्लाह की तरफ से थी, लेकिन आज मिसाल के तौर पे हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वो मिल जाए जो कि अल्लाह की तरफ से उतरी थी, तब भी वो हमारे लिए अमल करने के लिए नहीं है, इसलिए कि अब कुरान आ चुका है जो लेटेस्ट है, और वो किताबें अपने अपने जमाने के लिए सिर्फ थी, अगर ओरिजिनल आ भी जाए, बल तो है नहीं। लेकिन हमारा ईमान किस चीज के ऊपर है? अब ये यहाँ पे मतलब नहीं होता कि आप उनकी टीचिंग्स, उनके अंदर जो बातें हैं उनके ऊपर ईमान लेके, बल्कि ये मतलब होता है कि हम ये मानते हैं कि वो भी अल्लाह की तरफ से उतरी थी। यानी बताने का मकसद यहाँ पे क्या है कि ये जो कुरान है ये पहली दफा कोई नहीं अल्लाह की तरफ से किताब उतरी, बल्कि इससे पहले भी अल्लाह की तरफ से तालीमात आई है। ठीक है, ये बात हो गई। लेकिन आप ये देखें कि पहले कुरान की बात आई, उसके बाद ये पिछली की बात आई, हालांकि जमाने के लिहाज से देखा जाए तो पिछली की पहले बात आनी चाहिए कि हम पिछली किताबों पे भी मानते हैं और कुरान को भी मानते हैं, है ना? ऐसे होना चाहिए था ना, लेकिन हुआ क्या कि पहले कुरान और फिर उसके बाद इन किताबों की बात। तो वजह क्या है इसकी? वजह इसकी ये है कि हम सबसे पहले कुरान के ऊपर ईमान लेकर आते हैं, और इसकी बेस के ऊपर हम उन किताबों को देखेंगे कि उनमें कौन सी चीज है जो अल्लाह की तरफ से और कौन सी चीज है जो अल्लाह की तरफ से नहीं है, इन्होंने खुद ऐड की। ये कुरान को कहा कि ये मुहैमिन है, निगेबान है उन किताबों का भी, यानी उन किताबों में जो सही चीजें हैं उनका बताता है कि ये सही है। وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, और आखरत पर वो ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, ईमान भी नहीं, यकीन। यकीन जो होता है ना वो ईमान से भी आगे का लेवल है। यकीन में क्या है कि यानी जरा सा भी कोई शायबा भी नहीं है, जरा सी भी कोई जरा एक रमक भी नहीं है किसी चीज की कि कोई कोई बात इसके अंदर के पता नहीं ऐसा है भी या नहीं। नहीं, एब्सोल्यूट कन्विक्शन जिसको कहते हैं ना, वो यकीन होता है कि मेरा दिल जिसको कहते हैं ठुक चुका है उसके ऊपर, कि जिसको इंसान कभी भुलाता नहीं है, वो चीज है यकीन। ठीक है, तो वो आखरत पर यकीन रखते हैं। और कैसा यकीन? ऐसा नहीं कि अपने मनमाने कॉन्सेप्ट है, मनमाने कॉन्सेप्ट तो मुशरिकी ने मक्का के भी थे, यहूद के भी थे, इन सब के हैं कि हाँ एक आएगा डे ऑफ जजमेंट, लेकिन उनके अपने अपने कॉन्सेप्ट थे। यहूद के आप पढ़ेंगे आगे कि हमें तो बस आग में डाला ही नहीं जाएगा कभी भी, हम तो बस चंद दिन अगर गए भी तो वो आग में रहेंगे, वरना तो हम जन्नती ही हैं। ईसाइयों का भी यही था और इनका भी ये कहते थे, हम तो सिर्फ सिर्फ जन्नत के अंदर यहूदी या ईसाई जाएगा और कोई नहीं जाएगा, यानी अपने अपने कॉन्सेप्ट बनाए। और उस दिन तो हमारे ईसा अलैहि सलाम ही आके हमें छुड़ा लेंगे, वो ही सूली पे चढ़ गए, उन्होंने हमारे गुनाह अपने सर ले लिए। इस किस्म के जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो सही नहीं। आखरत का कॉन्सेप्ट जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया उसके मुताबिक यकीन, यानी आखरत का सही अकीदा, उस पे यकीन रखते हैं, मन माने खुद ही नहीं बनाए हुए आखरत के कि जैसा मेरा दिल चाहेगा वैसे मैं आखरत का एक कॉन्सेप्ट बना लूंगी, वो नहीं, यकीन। और जब यकीन आता है ना तो फिर ये वो अकीदा है जिससे जिंदगियां बदल जाती हैं, जिंदगी बदल जाती है टोटली। और जब सहाबा के अंदर भी ये यकीन आया था ना तो वो तो कुछ और ही बन गए थे, वो तो वो थे ही नहीं जो पहले थे। कहाँ वो जो बच्चियों को जिंदा दरगोर करने वाले, कहाँ वो सहाबा कराम जिनसे अल्लाह राजी हो गया। और आखरत में ना मौत से लेकर हशर नशर मीजान पुल सिरात जन्नत जहन्नुम सब चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, कब्र और सब चीजें हैं इसके अंदर। ये सब आखरत के ही अहवाल है, आखरत शुरू हो गई उसकी जो इसको मौत आ गई। तो यकीनून वाला जो है ना, यकीन रखने वाला, एक होता है जन, जन का जो उलट है ना वो यकीन है, गुमान उसका उलट यकीन, किसी चीज को ऐसे मान लेना जैसे आपने अपनी आंखों से देखा हो। जैसे हजरत अली फरमाते थे ना कि अगर मैं जन्नत जहन्नुम को देख भी लूं तो मेरे ईमान में जरा भी फर्क नहीं आएगा, यानी दुनिया में ही उनका ईमान ऐसा था जैसे उन्होंने देखी हो सामने, जैसे वो सामने है उनके, उनको जैसे नजर आती है, ऐसा उनका ईमान था। ऐसे नहीं कि वेग सा ईमान, कभी कभी याद आ जाता है कि आखरत है, कभी कभी जब कोई मरता है तो फिर बड़ा याद आती है, फिर उसके बाद फिर भूल ही जाती है। नहीं, यकीन यकीन था। तो फिर आप देखें कि हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा जो है बीवी के साथ बैठे हुए हैं, हम इंसान को अपनी बीवी के साथ बैठा हो मजे से तो उसको कहाँ कुछ चीज ऐसी याद आएगी। और ये भी आता है बीवी की गोद में सर रखे हुए और रो पड़े, उनकी बीवी ने कहा आप क्यों रो रहे हैं, किस चीज ने आपको रुलाया। फरमाने लगे कि मुझे अल्लाह ताला की ये बात याद आ गई, अल्लाह ताला ने फरमाया वा इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर एक को जहन्नुम के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता मुझे निजात मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे नहीं पता। अब देखें आप, ये वही बातें कर सकता है ना जिसको यकीन हो, जिसको नजर से मतलब ये नहीं है वो कहीं देख के आया हुआ, नजर से मतलब ये है कि उसके लिए वो रियलिटी हो, एक लिविंग रियलिटी हो, एक वेग सा कॉन्सेप्ट ना हो कि जैसे छोटे होते से बातें सुनी हुई हैं। हाँ, हमारे माँ बाप भी कहते थे हाँ कयामत है, चलो आएगी तो देखी जाएगी, चलो कौन सी ऐसी बात है। नहीं, जब ये यकीन बन जाता है ना, फिर इंसान की जिंदगी की उठने बैठने सोने जागने पहनने ओढ़ने खुशियां गम हर चीज के अंदर ना फिर उसको अपनी आखरत याद आती है, फिर उसको वो दिन याद आता है, भाई उस दिन मेरा क्या बनेगा, ये काम किया तो फिर मेरा क्या बनेगा, क्या होगा मेरे साथ पता नहीं। उसकी सोच वो रहता दुनिया के अंदर है, फिजिकली दुनिया में रहता है, उसका माइंड पता है कहाँ होता है, आखरत में। उसकी कैलकुलेशन सारा दिन आखरत के मुताबिक हो रही थी, कैलकुलेशन। आप जैसे यहाँ पे सौदे करते ना, इतना दूंगी तो इतना मिलेगा, इसमें इतना प्रॉफिट होगा, वो यहाँ पे लगा दिया तो घाटा हो जाएगा, बिजनेसमैन ऐसे करते हैं ना। तो वो भी अल्लाह के साथ सौदा करने वाला है, वो सारा दिन उसकी ये कैलकुलेशन हो रही है, क्या करूंगी तो क्या मिलेगा वहां पे, अच्छा ये कर लिया तो वहां नुकसान हो जाएगा, वो इस माइंड सेट के साथ रहता है दुनिया में। हाँ जी, हम बताएं कि हमारा ये माइंड सेट होता है, क्योंकि यकीन करने वालों का ये होता है यकीन, या भूला रहता है आखरत का कॉन्सेप्ट, कहीं कहीं याद आता है। क्यों सहाबा इतना रोते थे, क्यों याद कर करके उनको जब आयतें ऐसी पढ़ते थे जो आखरत की होती थी तो क्यों उनको ऐसे रोना आता था, रोना इसीलिए आता था उनको पता होता था कि ये आगे मेरे आने वाले, ये तो हमारा बनेगा क्या। जैसे हजरत अबू हुरैरा थे, जब उनकी मौत का वक्त करीब आया रोने लगे, लोगों ने पूछा आप क्यों रोते हैं, क्या दुनिया छोड़ने की वजह से रो रहे हैं, फरमाने लगे नहीं बल्कि मेरा सफर बहुत लंबा है और मेरे पास कलील ज्यादे रहा है, बहुत थोड़ा सामान है, मैं इस वजह से रो रहा हूं, मैंने उस टीले पे शाम की है जिससे आगे पता नहीं जन्नत है या जहन्नम है, मुझे नहीं पता मेरी मंजिल कौन सी है। ऐसे उनको यकीन होता था, ऐसे उनको था कि क्या सफर है, कितना लंबा वो सफर है, हमें तो पता ही नहीं कि कितना लंबा सफर है आगे, उसकी मंजिलें पता है आपको कि क्या क्या मंजिलें। अच्छा, एक सीरीज हमने की थी रमजान में, की थी मैदाने माशर में मेरी कहानी, आप में जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो वेबसाइट पे जाएंगे ऑडियो लेक्चर्स में देखिएगा, मैदाने माशर में मेरी कहानी, वो सीरीज सुनिएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये वो लोग हैं जो सहाबा थे, लेकिन कोई ऐसी खुशफहमियां नहीं है कि हाँ हम तो जन्नत में ही जाने वाले हैं, हमें क्या परवाह, हमें तो कोई मसला ही नहीं। हजरत उमर के बारे में आता है कि वो जिस वक्त उनकी वफात का वक्त था तो हजरत हुज़ैफा को बुलाया, फरमाया मैं तुम्हें कसम दे के पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के नाम तुम्हें बताए थे उनमें कहीं मेरा नाम तो नहीं है, क्योंकि मुनाफिकीन के नाम सिर्फ हजरत हुज़ैफा को पता थे और किसी को नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे, कसम दे के पूछ रहे हैं। और ये हजरत उमर हैं जो अशरा मुबशरा में से हैं, और फिर उसके बाद मौत से पहले अपना सर जमीन में रख दिया, बेटे ने उठा के सर गोद में रख लिया, दे मेरा सर छोड़ दो, सर को जमीन में रख दो, और अपना सर जमीन में लोट पोट करने लगे और फरमाने लगे हैं उमर तू बर्बाद हो गया अगर तेरे रब ने तुझे माफ ना किया। ऐसा यकीन था उनको कि आखरत है, इसके बाद सवाल जवाब है, मुझे अल्लाह के आगे खड़े होना है, उसकी अदालत है, मीजान है, मेरी नेकियां और बदियां तुलनी है, इसीलिए तो वो अबू हुरैरा फरमा रहे हैं मेरे पास ज्यादे रहा बहुत थोड़ा है, बहुत कलील है। ऐसा यकीन था उनको, हमारे यकीन कहाँ चले गए, क्यों नहीं हमें ये सोच आती, क्या एवरी डे भी सोच आती है उस सबसे बड़ी रियलिटी की, सबसे बड़ी हकीकत है ये, इस हकीकत ये वो नहीं है जो कभी टल सके, ये वो हकीकत है, कोई भी और चीज टल सकती है, आपका इम्तिहान है टल सकता है, किसी की शादी है टल सकती है, कोई और दावत रखी भी टल सकती है, हो सकता है हो नहीं हो, लेकिन ये वो हकीकत है जिसने हो के ही रहना है, फिर भी इसका कितना ख्याल आता है, हर दिन आता है कि नहीं आता। फरमाया जिनके पास ये चीजें हैं उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जो हिदायत पे अपने रब की तरफ से, भाई जिसको ये हर वक्त ये अल्लाह की अदालत की सोच रहती हो, वो अपने आप को खुद यहाँ रहता यहाँ लेकिन अपने आप को खड़ा हुआ वहां पे महसूस करता है, जो अपनी सोच ही सोच में वहां पहुंचा रहता है, ये हिदायत पे नहीं होंगे तो और कौन होंगे, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये हिदायत पर है और मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से हिदायत पर, यानी हिदायत सिर्फ अल्लाह देने वाला, एक मैंने आपको बताया था ना एक हिदायत है क्या वो जो रास्ता दिखा देना, एक हिदायत है साथ बैठ जाना और चला देना, यानी अल्लाह ताला ही फिर जो उनको चलाने वाला है अल्लाह फिर उनको पकड़ के चला देता है, वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जब ये काम करते हैं ना फिर ही अल्लाह इनको वो हिदायत देता है, और यही लोग हैं फिर कि वो मुफ्लिह हैं, फलाह पाने वाले हैं, फलाह फलाह कहते हैं किसान को, किसान क्या करता है बड़ी मेहनत करता है फिर उसको फसल मिलती है, इस लफ्ज से ही बता दिया गया कि मेहनत बड़ी करनी पड़ती, ये जन्नत का रास्ता आसान नहीं है, इस रास्ते को अबूर करना ना बड़ा जान जोखों का काम है, फिर जाके कहीं जन्नत मिलती है, तो जैसे किसान सारा साल मेहनत करता है तो एंड में जाके उसको फसल मिलती है ना, इसी तरह ये कामयाबी वो है जो बड़ी अथक मेहनत के बाद ये मिलेगी, ये आराम कर करके और बस मजे कर करके और बस दुनिया में ही पढ़ के और कश्ती के अंदर पानी आया हुआ है और होश ही नहीं है कुछ, इससे नहीं जन्नत मिलती, ये कामयाबी पाने के लिए जैसे वो किसान है मेहनत करता है और फिर पाता है, इसी तरह ये मुत्तकी इसको पहुंचते हैं इस कामयाबी को क्योंकि वो मेहनत करते हैं, अगर तुम्हें भी मुत्तकी बनना है तो तुम्हें भी मेहनत करनी होगी तब मंजिल पा सकोगे, अल्लाह ताला हमें मुत्तकीन में शामिल फरमा दे, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमा दे जिनसे वो राजी हो गया और जिनको वो हाथ पकड़ के और रास्ते पर चला दे, सिराते मुस्तकीम पर चला दे और मंजिल तक पहुंचा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, तिलावत सुनें।
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وأولئك هم المفلحون.